नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से फोन पर बात कर चक्रवात दित्वा से हुई तबाही के बाद निरंतर सहायता का आश्वासन दिया। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान से मृतकों की संख्या बढ़कर 390 हुई, 352 लोग अब भी लापता। भारत को पहली बार स्वीडन में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान का अध्यक्ष पद संभालने के लिए आमंत्रित किया गया। सरकार का भारत में उपयोग के लिए निर्मित या आयातित मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करने का निर्देश। यूक्रेन युद्ध समाप्त करने और शांति योजना पर चर्चा के लिए अमरीकी दूत स्टीव विटकॉफ आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। और जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी में भारत आज शाम अंतिम ग्रुप लीग मैच में स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात दित्वा से प्रभावित लोगों को बचाव और राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत भारत की निरंतर सहायता का आश्वासन दिया है। कल टेलीफोन में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महासागर परिकल्पना और सबसे पहले सहायता प्रदाता की स्थिति के अनुरूप भारत श्रीलंका को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति दिसानायका ने आपदा में भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने चक्रवात दित्वा के कारण श्रीलंका में हुई जान माल की हानि और व्यापक तबाही पर संवेदना भी व्यक्त की। इस बीच श्रीलंका में चक्रवात दित्वा के कारण बाढ़ और भूस्खलन की कई घटनाएं दर्ज की गई हैं। अधिकारियों के अनुसार इससे 390 लोगों के मारे जाने और 352 लोगों के लापता होने की खबर है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। भारत के AC-130J विमान के जरिए लगभग 10 टन चिकित्सा सहायता भेजी गई है। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
श्रीलंका में बचाव कार्य तेज हो गए हैं, जहां भारतीय टीमें स्थानीय अधिकारियों और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टरों ने बाढ़ग्रस्त इलाकों से 96 फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला, जिनमें 3 गंभीर रूप से घायल लोग भी शामिल थे। हेलीकॉप्टरों ने 5.5 टन से ज्यादा राशन और दवाइयां भी उन क्षेत्रों में पहुंचाई जो पूरी तरह कट चुके हैं। जमीन पर NDRF टीमें लगातार जीवन बचाने के मिशन में लगी हुई हैं और उन्होंने 43 लोगों को, जिनमें छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं, उनको उन जगहों से निकाला जहां सड़क का रास्ता नहीं है। बदुल्ला में अधिकारियों ने 5 फीट से अधिक मलबे के नीचे से एक मृत व्यक्ति को बरामद किया और वहां खोज अभियान अभी भी जारी है। बड़ी नदियों में पानी फिर बढ़ने का खतरा बना हुआ है और ऐसे समय में भारत का ऑपरेशन सागर बंधु पूरी तरह सक्रिय है, राहत दलों को मजबूत समर्थन देते हुए और श्रीलंका की मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा हुआ। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
इंडोनेशिया में चक्रवाती तूफान के कारण विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 500 से अधिक हो गई है। 500 से अधिक लोग लापता और हजारों लोग घायल हुए हैं। बचाव कर्मियों को अब भी प्रभावित इलाकों तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। एक रिपोर्ट।
आचे, उत्तरी सुमात्रा और पश्चिमी सुमात्रा प्रांत सबसे अधिक प्रभावित हैं। हजारों लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है तथा जरूरी सामान की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने कहा कि सरकार राहत कार्यों में सहायता के लिए हेलीकॉप्टर और विमानों का उपयोग कर रही है। पिछले सप्ताह इंडोनेशिया में चक्रवात सेनेयार के प्रभाव से कई घर बह गए और हजारों इमारतें जलमग्न हो गईं। मूसलाधार वर्षा और तूफान से थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस और श्रीलंका के कुछ हिस्सों में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। चक्रवात के प्रभाव से इस महीने पूरे एशिया में 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
सरकार ने मोबाइल हैंडसेट की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए मोबाइल में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करने के निर्देश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट।
नागरिकों को नकली हैंडसेट खरीदने से बचने, दूर संचार संसाधनों के संदिग्ध दुरुपयोग की आसान रिपोर्टिंग और संचार साथी पहल की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए दूर संचार विभाग ने मोबाइल हैंडसेट निर्माता और आयातकों को भारत में उपयोग के लिए निर्मित या आयातित सभी मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल करने का निर्देश दिया है। विभाग ने कहा कि पहले से इंस्टॉल किया गया संचार साथी एप्लीकेशन अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए पहली बार उपयोग करने या डिवाइस सेटअप करने पर आसानी से दिखाई देने योग्य और सुलभ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन की कार्यक्षमता को अक्षम या प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। विभाग ने मोबाइल हैंडसेट निर्माताओं और आयातकों को यह भी निर्देश दिया है कि वे पहले से निर्मित और भारत में बिक्री चैनलों में मौजूद उपकरणों में सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से ऐप को पहुंचाने का प्रयास करें। विभाग ने निर्माताओं को 90 दिनों के भीतर कार्यान्वयन पूरा करने और 120 दिनों में रिपोर्ट जमा करने को कहा है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान इंटरनेशनल आइडिया का अध्यक्ष पद संभालने के लिए आमंत्रित किया गया है। भारत की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कल स्वीडन के स्टॉकहोम में इसकी अध्यक्षता संभालेंगे। श्री ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ये भारत के सभी नागरिकों और चुनाव कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का क्षण है।
भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावों के सफल संचालन को आज पूरा विश्व जानता भी है और मानता भी है, और इसीलिए विश्व के 37 जनतांत्रिक देशों के प्रतिष्ठित समूह ने अपने 30 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया है। यह भारत के सभी नागरिकों और सभी चुनाव कर्मियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है।
यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने को लेकर कूटनीति तेज होने के बीच अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने संवाददाताओं को बताया कि अमेरिका किसी समझौते पर पहुंचने को लेकर बेहद आशाविंद है। उनकी ये टिप्पणी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की वोलोदिमिर के पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के बाद आई है। इस बीच अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विटकॉफ ने रविवार को फ्लोरिडा में एक यूक्रेनी शिष्टमंडल के साथ बातचीत की। अमरीका द्वारा प्रस्तावित 28 सूत्रीय शांति योजना को 2 सप्ताह पहले पेश किया गया था। रूस ने मॉस्को पर पूर्व आक्रमण की अनुमति के बारे में एक वरिष्ठ नेटो अधिकारी की टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना बताया है और पश्चिमी सैन्य गुट के सदस्य देशों के लिए संभावित खतरों के बारे में चेतावनी दी है।
रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोव ने एक बयान में कहा कि इन टिप्पणियों को यूक्रेन संकट के समाधान के लिए जारी प्रयासों को कमजोर करने के एक जानबूझकर किए गए प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। वे नाटो सैन्य समिति के अध्यक्ष इटली के एडमिरल ग्यूसेप कावो ड्रेगोन के साक्षात्कार पर प्रतिक्रिया दे रही थी। इसमें उन्होंने कहा था कि नाटो रूस के युद्ध के खिलाफ और अधिक आक्रामक होने पर विचार कर रहा है और कुछ परिस्थितियों में पूर्व आक्रमण को रक्षात्मक कार्रवाई के रूप में देखा जा सकता है। रूस के प्रवक्ता ने गुट पर हमला करते हुए कहा कि नाटो ने अपने वास्तविक लक्ष्यों और इरादों को छिपाना पहले ही बंद कर दिया है। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल।
संयुक्त अरब अमीरात का आज 53वां राष्ट्रीय दिवस है। ये दिन शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान के नेतृत्व में अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कुवैन और फुजैरा द्वारा गठित संघ की स्मृति में मनाया जाता है। तमिलनाडु के मदुरई में पुरुष जूनियर विश्व कप के नॉकआउट चरण से पहले अंतिम ग्रुप लीग मुकाबले में आज भारत स्विट्जरलैंड से खेलेगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। उधर चिली के सेंटियागो में महिला हॉकी जूनियर विश्व कप में कल भारत ने नामीबिया को 13-0 से हरा दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से फोन पर बात कर चक्रवात दित्वा से हुई तबाही के बाद निरंतर सहायता का आश्वासन दिया। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान से मृतकों की संख्या बढ़कर 390 हुई, 352 लोग अब भी लापता। भारत को पहली बार स्वीडन में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान का अध्यक्ष पद संभालने के लिए आमंत्रित किया गया। सरकार का भारत में उपयोग के लिए निर्मित या आयातित मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करने का निर्देश। यूक्रेन युद्ध समाप्त करने और शांति योजना पर चर्चा के लिए अमरीकी दूत स्टीव विटकॉफ आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।